अध्याय पांच, भाषा के विभिन्न रूप। वस्तुतः जितने व्यक्ति हैं उतनी भाषाएं हैं, कारण कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बोलने का ढंग एक नहीं होता। इसका प्रमाण यह है कि अंधकार में भी किसी की वाणी सुनकर हम उसे पहचान लेते हैं। यह अंतर केवल बोलने के ढंग में ही नहीं, उच्चारण, शब्द भंडार, यहाँ तक कि वाक्य विन्यास में भी देखा जाता है। साहित्य में इसी का अध्ययन शैली के अंतर्गत होता है। प्रेमचंद की भाषा प्रसाद से भिन्न है और पंत की निराला से। हिंदी का प्रयोग तो यूं सभी करते हैं, फिर यह अंतर क्यों? जो इन लेखकों या कवियों की रचनाओं से परिचित हैं, वे दो चार पंक्तियां पढ़ते पढ़ते भी अनायास कह देते हैं कि यह अमुक की भाषा है। प्रेमचंद और प्रसाद की भाषा में किसी को भ्रम नहीं हो सकता। यह इसलिए कि उस भाषा के पीछे उनका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व का यह प्रभाव शिक्षित व्यक्तियों की ही भाषा में ही नहीं, बल्कि अशिक्षितों की भाषा में भी इसी रूप में पाया जाता है। जिसका जैसा व्यक्तित्व है, उसकी भाषा उसी सांचे में ढल जाती है। इस तथ्य को स्वीकार कर लेने पर भाषा के अनंत रूप हो जाते हैं। वस्तुतः उसके अनंत रूप हैं भी। भाषा का आविर्भाव व्यक्ति में होता है, इसलिए भाषा की उत्पत्ति का आधार वही है, किंतु उसका प्रेरक तत्व समाज है, क्योंकि भाषा का उपयोग सामाजिक योगक्षेम के लिए ही किया जाता है। भाषा के वैयक्तिक और सामाजिक पक्षों की चर्चा अंशतः पहले भी हो चुकी है। भाषा के रूपों पर विचार करते समय इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ये दोनों पक्ष भाषा के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की सत्ता ही संभव नहीं है। हमने अभी देखा कि प्रत्येक भाषा के भिन्न भाषा होती है। यदि इस तथ्य तक ही अपने को सीमित रखें तो भाषा के भी अनंत भेद माने होंगे। एक दृष्टि से यह सही है, किंतु सामाजिक दृष्टि से विचार न करना दृष्टि की एकांगिकता का द्योतक होगा। वक्ता के भेद से भाषा के अनेक रूप हो जाते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति की निरपेक्ष सत्ता नहीं है, उसी प्रकार उसकी भाषा की भी निरपेक्ष सत्ता नहीं है। विभिन्न दृष्टियों से देखने पर एक ही व्यक्ति विभिन्न श्रेणियों में आता है। उदाहरणार्थ शिक्षा, संस्कृति, व्यवसाय, वातावरण, पर्यावरण आदि के भेद से व्यक्ति की स्थिति और संस्कार में भेद पड़ता है, जिसका अनिवार्य प्रभाव भाषा पर पड़ता है। अंग्रेजी पढ़े सभी लोग एक ही भाषा का व्यवहार नहीं करते। डॉक्टर की भाषा से वकील की भाषा भिन्न होती है, तो इंजीनियर की भाषा से भाषा वैज्ञानिक की। स्थूल दृष्टि से देखने पर सभी अधीत और शिक्षित हैं, किंतु उनके विशेषीकरण का प्रभाव उनकी भाषा में भी परिलक्षित होता है। भाषा के पार्थक्य में उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त इतिहास, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति आदि का भी पर्याप्त प्रभाव पाया जाता है। भाषा के रूपों का विचार करते समय इन सारी बातों को स्मरण रखना आवश्यक है। हमने देखा है कि भाषा के तीन रूप होते हैं, वाणी, भाषा और अधिभाषा। अर्थात भाषा की स्थिति तीन प्रकार से संभव है, व्यक्ति में, समुदाय में और सामान्य अमूर्त रूप में। सामान्य या अमूर्त रूप भाषा की वह व्यापकता है जिसमें भेद का अवकाश नहीं है। वहां पहुंचकर भाषा निरुत्पादी हो जाती है, किंतु शेष दो व्यावहारिक हैं और उन पर विचार किया जा सकता है। पहला, परिनिष्ठित भाषा। भाषा का आदर्श रूप वह है जिसमें वह एक बृहत्तर समुदाय के विचार विनिमय का माध्यम बनती है, अर्थात उसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य रचना के लिए होता है। हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी इसी श्रेणी की भाषाएं हैं। भाषा के इस रूप को मानक, आदर्श या परिनिष्ठित कहते हैं, जो अंग्रेजी के स्टैंडर्ड शब्द का रूपांतर है। परिनिष्ठित भाषा विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त और व्याकरण से नियंत्रित होती है। कोई भाषा कैसे परिनिष्ठित बन जाती है, इसकी चर्चा आगे की जाएगी। दो, विभाषा यानी बोली। एक परिनिष्ठित भाषा के अंतर्गत अनेक विभाषाएं या बोलियां हुआ करती हैं। भाषा के स्थानीय भेद से प्रयोग के भेद में जो अंतर पड़ता है उसी के आधार पर विभाषा का निर्माण होता है। जैसा हमने अभी देखा है, प्रत्येक व्यक्ति की भाषा दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। ऐसी स्थिति में यह संभव है कि बहुत दूर तक भाषा की एकरूपता कायम रखी जा सके। स्वभावतः एक व्यक्ति में भी कुछ दूरी पर भेद दिखाई देने लगता है। यह स्थानीय भेद जो मुख्यतः भौगोलिक कारणों से प्रेरित होता है, विभाषाओं का सर्जक बनता है। उदाहरणार्थ, खड़ी बोली जाता हूँ, ब्रजभाषा जात हो, भोजपुरी जात हई, मगही जाही। इन चारों वाक्यों को देखने से विभाषा का रूप स्पष्ट हो जाता है। स्थान भेद से एक ही क्रिया विभिन्न रूप धारण कर लेती है, फिर भी ये रूप इतने भिन्न नहीं है कि परस्पर समझ में न आए। बोध गम्यता रखते हुए स्थानीय भेद को विभाषा कहते हैं। इस कसौटी पर ऊपर लिखित चारों वाक्य खड़े उतरते हैं। यदि भेद जब इतना अधिक हो जाता है कि समझ न आए तो वह विभाषा का नहीं भाषा का भेद बन जाता है। उदाहरणार्थ, जाता हूँ के लिए यदि कोई आई गो कहे तो दोनों में कोई संबंध नहीं रह जाता। जाता हूँ समझने वाला यदि अंग्रेजी नहीं जानता तो आई गो नहीं समझ सकता। भाषा भेद और विभाषा भेद का अन्यतम आधार बोधगम्यता है। प्रायः विषमताओं में से कोई भी परिस्थिति की अनुकूलता से भाषा बन बैठती है। भाषा और विभाषा का अंतर बहुव्यापकता और अल्पव्यापकता का है, जिसके मूल में भौगोलिक सीमा काम करती है। अंग्रेजी में विभाषा को डायलेक्ट कहते हैं। 3. अपभाषा। भाषा में ही सब सामाजिक दृष्टि से ऐसे प्रयोग आ जाते हैं जो शिव शिष्ट रुचि को अग्राह्य प्रतीत होते हैं, तो उनको अपभाषा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्लैंग कहते हैं। अब भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क. शास्त्रीय आदर्शों की उपेक्षा। भाषा में शास्त्रीय आदर्शों जैसे शुद्धता, श्लीलता आदि की रक्षा का आग्रह रहता है, किंतु अब भाषा में नहीं। ख. शब्दों के निर्माण के सिद्धांत की उपेक्षा। भाषा में शब्दों का निर्माण कैसे होगा, इसके व्याकरण सम्मत नियम है। उन नियमों को ध्यान में रखकर ही शब्दों का या एक शब्द के अनेक रूपों का निर्माण होता है। अपभाषा में उन नियमों का ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे टंडेल या अगणधत्त आदि शब्द किसी नियम से सिद्ध नहीं हैं। ग. भाषा के शब्दों का अपभाषा में अर्थ विस्तार दिखता है। भाषा में जो शब्द सामान्यतः जिस रूप में प्रचलित रहते हैं, अपभाषा में उससे हटकर हीन अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। जैसे उसने उसकी अच्छी हजामत बनाई या मरम्मत की, मारते मारते कचूमर निकाल दिया, उसने उसे धंसा दिया, कोई मक्खन लगाना उससे सीखे, एक इसी बल पर वह कहां 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 से कहां पहुंच गया। घ. अपभाषा कुछ विशेष श्रेणियों, सामाजिक वर्गों या समवयस्कों में प्रचलित रहती है। अर्थात अपभाषा के प्रयोग के लिए वर्ग विशेष, समाज विशेष या वय विशेष की सीमा देखी जाती है। एक खास तरह का प्रयोग इस सीमा में विशेष लोकप्रियता प्राप्त कर लेता है। अपभाषा की इन विशेषताओं को देखने से स्पष्ट होता है कि उसका निर्माण शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तत्वों से होता है, जिनमें लोक मर्यादा और शिष्ट रुचि को प्रायः ध्यान में नहीं रखा जाता या जानबूझकर उनकी उपेक्षा की जाती है। अपभाषा के प्रयोगों पर विचार करने से प्रयोक्ता के शैक्षिक, मानसिक स्तर आदि का आसानी से पता लग जाता है। स्लैंग के लिए हमने अपभाषा शब्द का प्रयोग किया है, जिसका आधार महाभाष्यकार की यह पंक्ति है। ब्राह्मणेन न म्लेच्छितव्य नापभाषितव्य। महाभाष्य पश्मशासनिक। अर्थात ब्राह्मण को न तो अस्पष्ट बोलना चाहिए और न अपभाषण करना चाहिए। अपभाषण उसी अर्थ का बोधक है जिसके लिए स्लैंग का प्रयोग होता है। किसी भी भाषा के अंतर्गत अपभाषा की श्रेणी में जितने आने वाले प्रयोगों का अध्ययन भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा उपादेय सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उससे जीवन एवं समाज के अनेक पक्षों पर प्रकाश पड़ने की संभावना रहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि नवीनता, विनोद, उच्छृंखलता, संस्कारहीनता आदि अनेक कारण परिभाषा के प्रेरक हुआ करते हैं। सामान्यतः अपभाषा श्रेष्ठ भाषा में गृहित नहीं होती, किंतु जब कोई प्रयोग बहुत चल पड़ता है तो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वह श्रेष्ठ भाषा में प्रयोग पा जाता है। नंबर 4, विशिष्ट व्यावसायिक भाषा। समाज कोई अरूप वस्तु नहीं है। व्यक्ति को जब सामाजिक प्राणी कहा जाता है तो समाज के किसी विशिष्ट रूप को ही ध्यान में रखकर समाज में उसकी कोई न कोई स्थिति होती है। वह कोई न कोई काम करता है। व्यवसाय के अनुसार अनेक श्रेणियां बन जाती हैं, जैसे किसान, लोहार, बढ़ई, जुलाहा, सोनार, दर्जी, कुम्हार, शिकारी, मल्लाह, डॉक्टर, वकील, अध्यापक, दुकानदार, पंडित, पुजारी, मौलवी आदि। इन सभी व्यवसायों की अलग अलग शब्दावली होती है। यह शब्दावली एक तरह से वैसी ही प्राविधिक या पारिभाषिक हो जाती है जैसे साहित्य, दर्शन, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिकी, रसायन आदि की। अर्थात किसी व्यवसाय की शब्दावली उसी में चलती है। आप किसी की भाषा सुनकर आसानी से निर्णय कर सकते हैं कि वह किस व्यवसाय का व्यक्ति है। कबीर जाति के जुलाहा थे, अतः उनकी कविता में ऐसे अनेक प्रतीक अनायास आ गए जो जुलाहे के व्यवसाय संबद्ध हैं, जैसे झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना कहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। ताना, भरनी या तार आदि शब्द सूर, तुलसी या बिहारी की रचनाओं में इस रूप में नहीं पाए जाते। अंग्रेजी शब्द पढ़े लिखे लोगों की भाषा में अंग्रेजी के शब्दों का उतना बाहुल्य रहता है कि हिंदी के शब्द बहुत प्रयास करने पर ही दिखाई देते हैं। उदाहरणार्थ एयर स्पेस, वायोलेशन और डिप्लोमेटिक मेल बैक टेम्पर कहने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को स्ट्रांग प्रोटेस्ट लेटर भेजा है, या डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने एक इमरजेंट मीटिंग कॉल कर एक मेंबर के अंगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन का रिजोल्यूशन पास किया है। इस तरह की अंग्रेजी लदि हिंदी वे ही लोग बोलते हैं जिनको हिंदी का ज्ञान या अभ्यास नहीं है, या जो जानबूझकर यह दिखाना चाहते हैं कि वे अंग्रेजी जानते हैं, क्योंकि भारत में शिष्ट सभ्य कहलाने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य समझा जाता है। हमारे देशों में जो चीज़ हेय समझी जाती है वही यहाँ प्रशस्य। दूसरे देशों में जो चीज़ हेय समझी जाती है वही यहाँ प्रशस्य। भारतीय कचहरी की भाषा की छटा कुछ और निराली होती है, जिसमें अरबी फारसी के शब्दों की अधिकता पाई जाती है। जैसे मुंसिफ अव्वल के इजलास में जो आपका दीवानी का मुकदमा था वह तारीख पर गवाहान के हाजिर न होने से खारिज हो गया। वकील, मुख्तार या पैरवीकार अपने व्यवसाय के अनुकूल इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। भक्त जब शरणागत, वत्सल भाव भयहारी, वृंदावन विहारी, दयानिधान भगवान कृष्ण को स्मरण करते हैं तो उनकी भाषा का अंतर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की निम्नलिखित भाषा से स्पष्ट हो जाता है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इस्लाम की तालीम, इस्लाम की तारीख, इस्लाम के उलूम व फ़नून, इस्लाम की तहजीब मेरी दौलत का सरमाया है और मेरा फ़र्ज है कि इसकी हिफाजत करूं। लेकिन इन तमाम एहसासात के साथ मैं एक और एहसास भी रखता हूं जिसे मेरी ज़िंदगी की हकीकतों ने पैदा किया है। इस्लाम की रूह मुझे इससे नहीं रोकती, मैं हिंदुस्तान की एक और नाकाबिले तकसीम मुतहदा कौमियत का एक अंसर हूँ। मैं इसकी तखमीन का एक नागुजरिन आनिल हूँ। मैं अपने इस दावे से कभी दस्ते बरदार नहीं हो सकता। कौमाबंद दर्जी की भाषा मौलाना आज़ाद की भाषा से कुछ भिन्न इस प्रकार होती है। इन्वर्टेड कामा, पहले कच्चा करके तब बखिया करना और आस्तीन की मोहरी नाखूनी सीना, काज बनाकर बटन भी टांग देना। कौमाबंद अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। इन कतिपय उदाहरणों से स्पष्ट हो गया कि शिक्षा और संस्कृति के साथ व्यवसाय का भी असर भाषा पर कितना पड़ता है। जो जिस व्यवसाय में है वह उसकी मधी शब्दावली से मुक्त हो सके यह असंभव है। कहने को ऊपर के सभी उदाहरण हिंदी के हैं, फिर भी इनमें परस्पर कितना अंतर है। भाषा की प्रकृति व विचार करने वाले इन विशेषताओं पर भी ध्यान देते हैं। इन उदाहरणों की शब्दावली में जो अंतर है वह क्यों है? किसी की भाषा में अंग्रेजी शब्दों का बाहुल्य है तो किसी की भाषा में संस्कृत शब्दों का भी, और किसी की भाषा में अरबी फारसी शब्दों का।